ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 22 अक्टूबर 2023 के लिए है। विषय: मृत्यु के बाद की प्रक्रिया। स्वर्णपथ प्रकाशित वाक्य: जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। उत्तरदायी ध्यान: यशाया। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सिराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की हैं, क्योंकि तू संकट में दिनों के लिए गढ़, और जब भयानक लोगों का झोंका भीत पर भावचार के समय होता था, तब तू दारिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसी जीवनाकार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथारा हुआ दाख मधु होगा, और उत्तम से उत्तम जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब अन्य जातियों पर लटका हुआ है, उसे वो इसी पर्वत पर नाश करेगा। वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पूंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम अधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। और उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बात जोते हैं कि वो हमारा उद्धार करेगा। पाठ उपदेश बाइबल में से प्रकाशित वाक्य: धन्य है वो जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वो फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। यशाया: इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सेऊन में नींव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के युगे पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वो उतालवी ना करेगा, और मैं न्याय को डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान औलों से बह जाएगा, और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। तब जो वचा तुमने मृत्यु से बांधी है वो टूट जाएगी, और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई है वो ना ठहरेगी। मत्ती: और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती: वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। मत्ती: सुकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बथेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकारा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मत्ती: और देखो एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाओं को? यीशु ने कहा, ये कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने सम्मान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इस सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घाटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वो जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। ये सुनकर चेलों ने बहुत चाकत होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के बालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। लूका। फिर उसने चेलों से भी कहा, एक धनवान मनुष्य था जो बीन जाने कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से रहता था, और लाजर नाम का एक कंगाल घायों से भरा हुआ उसकी दीवारी पर छोड़ दिया जाता था, और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर से झुटान से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घायों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, और वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वास्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वास्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है, और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ा खड्डा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे ना जा सके और ना वहाँ से इस पार हमारे पास कोई आ सके। तो उसने कहा, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी ना मानेंगे। इफ़सियों। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके युगिक चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डीलडोल तक भर जाएं। याकूब। हे मेरे भाइयों, जब तुम नए नए प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घाटी न रहे। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। जीवन शाश्वत है, हमें इसका पता लगाना चाहिए और इसके बाद प्रदर्शन शुरू करना चाहिए। जीवन और अच्छाई अमर है, आइए फिर हम उम्र और तुषार की बजाय अपने अस्तित्व के विचारों को प्रेम, ताजगी और निरंतरता में आकार दें। ईश्वर ही जीवन या बुद्धि है जो जानवरों के साथ साथ पुरुषों की व्यक्तित्व और पहचान को बनाता और संरक्षित करता है। भगवान मनुष्य का दिव्य सिद्धांत और भगवान की समानता में आदमी अविभाज्य समान जैसा पूर्ण और शाश्वत हैं। विज्ञान पूर्णता के नियम को प्रस्तुत करता है और अमृता को प्रकाश में लाता है। भगवान और मनुष्य एक नहीं है, लेकिन ईश्वरी विज्ञान ईश्वर और मनुष्य के सह अस्तित्व के क्रम में और शाश्वत है। पवित्र होना समरसता और अमृता है। ये पहले से ही साबित हो गया है कि इसका ज्ञान यहाँ तक के छोटी सी डिग्री में नश्वर लोगों के भावतिक और नैतिक स्तर को ऊपर उठाएगा, दीर्घायु को बढ़ाएगा, चरित्र को शुद्ध और ऊंचा करेगा। इस प्रकार प्रगति अनंतता सभी त्रुटि को नष्ट कर देगी और अमृता को प्रकाश में लाएगी। प्रगति अनुभव से पैदा होती है। ये नश्वर मनुष्य का पकना ही है, जिसके माध्यम से नश्वर को अमर के लिए गिरा दिया जाता है, या तो यहाँ या इसके बाद पीड़ित या विज्ञान को जीवन और मन के बारे में सभी भ्रमों को नष्ट करना होगा और भावतिक भावना और स्वयं को पुनः उत्पन्न करना होगा। अपने कर्मों के साथ पुरानी मानवीयता को बंद करना होगा। कामुक या पापी कुछ भी अमर नहीं है। एक झूठी भावना और पाप की मृत्यु कार्बनिक भावनाओं की मृत्यु नहीं है, जो मनुष्य और जीवन समान जैसा पूर्ण वास्तविक और शाश्वत को प्रकट करती है। तथाकथित सुख और पदार्थ की पीड़ा नष्ट हो जाती है और उन्हें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान और होने की वास्तविकता के दोष के तहत बाहर जाना चाहिए। नश्वर विश्वास को उनके साथ भाग लेने के लिए त्रुटि और पाप में पूरा संतोष होना चाहिए। क्या नश्वर रोग इसे जल्दी या बाद में सीखेंगे और वो कितने समय तक विनाश के दर्द को झेलेंगे या त्रुटि के टॉप पर निर्भर करेंगे। चौकस शांत और सतर्क रहें। जिस मार्ग से ये समझ पैदा होती है कि ईश्वर ही एकमात्र जीवन है, वो सीधा और संकीर्ण है। ये मास के साथ एक युद्ध है जिसमें हमें पाप, बीमारी और मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, खा अभी या इसके बाद, निश्चित रूप से इससे पहले कि हम आत्मा के लक्ष्य तक पहुंच सकें या परमेश्वर में जीवन पा सकें। अच्छाई की ओर हर कदम भावतिकता से प्रस्थान है और ईश्वर आत्मा की ओर एक प्रवृत्ति है। भावतिक सिद्धांत सीमित, अस्थाई और असंगत के प्रति विपरीत आकर्षण द्वारा अनंत और शाश्वत अच्छे के प्रति इस आकर्षण को आंशिक रूप से पंगु बना देते हैं। ये मानना के पाप सर्वशक्तिमान और अनंत जीवन पर हावी हो सकता है, ये पाप है और इस जीवन को इस समझ के साथ प्रकाश में लाया जाना चाहिए कि कोई मृत्यु नहीं है, साथ ही साथ आत्मा के अनय अनुग्रह द्वारा भी। हालांकि हमें निरंतरण के अधिक सरल प्रदर्शनों के साथ शुरू करना चाहिए और जितनी जल्दी हम शुरू करें उतना ही बेहतर है। अंतिम प्रदर्शन अपनी उपलब्धि के लिए समय लेता है। चलते समय हम आँख से निर्दर्शित होते हैं, हम अपने पैरों से आगे देखते हैं और अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम आध्यात्मिक उन्नति की रेखा में एक कदम से आगे हैं। ये तथ्य कि मसीह या सत्य मृत्यु पर काबू पा लेता है और आतंकियों का राजा साबित हो जाता है, लेकिन एक नश्वर विश्वास या त्रुटि जिसे सत्य जीवन की आध्यात्मिक प्रमाणों से नष्ट कर देता है। इससे पता चलता है कि प्रतीव के प्रति इंद्रियों को जो दिखाई देता है वो वास्तविक मनुष्य और वास्तविक ब्रह्मांड के लिए एक नश्वर भ्रम है, लेकिन मृत्यु प्रक्रिया नहीं है। यशु की मृत्यु के बाद लगने वाली शारीरिक स्थिति सभी भावतिक स्थितियों से ऊपर होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और इस अतिशोक्ति ने उसके उद्गम की व्याख्या की और कब्र से परे एक परिवीक्षाधीन और प्रगतिशील राज्य का खुलासा किया। हमें ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि जीवन अब बात पर निर्भर करता है, लेकिन मृत्यु के बाद इस पर निर्भर नहीं करेगा। हम जीवन के विज्ञान की अज्ञानता में अपने दिन यहाँ नहीं बिता सकते हैं और इस अज्ञानता के लिए गंभीर पुरस्कार से परे खोजने की उम्मीद करते हैं। मृत्यु हमें अज्ञानता के लिए एक सामंजस्य के रूप में सामंजस्य पूर्ण और अमर नहीं बनाएगी। अगर यहाँ हम क्रिश्चियन साइंस को कोई ध्यान नहीं देते हैं जो आध्यात्मिक और शाश्वत है, तो हम इसके बाद आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार नहीं होंगे। सर्व अनमोरन क्रिश्चियन साइंस में एक नियम है जिसके द्वारा त्रुटि के खिलाफ हमारे युद्ध में हम सच्चाई या मसीह के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। ये नियम स्पष्ट रूप से ईश्वर को ईश्वरीय सिद्धांत के रूप में व्याख्या करता है। जीवन के रूप में पिता द्वारा दर्शाया गया, सत्य के रूप में पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व, प्यार से माँ द्वारा प्रतिनिधित्व किया। किसी ने किसी अवधि में यहाँ या इसके बाद प्रतीक नश्वर को भगवान के विपरीत एक शक्ति में नश्वर विश्वास के साथ जूझना चाहिए। हम जानते हैं कि सब बदल जाएगा एक पल में जब आखिरी त्रुहि ध्वनि होगी, लेकिन ज्ञान का ये अंतम निमंत्रण तब तक नहीं आ सकता जब तक कि मसीह चरित्र की वृद्धि में प्रतीक कम आमंत्रण के लिए नश्वर न होंगे। सर्वभाविक मुक्ति प्रगति और परिवीक्षा पर टिकी हुई है और उनके बिना अप्राप्य है। स्वर्ग एक सतियान यात्रा नहीं है बल्कि मन की एक दिव्य स्थिति है जिसमें मन की सभी अभिव्यक्तियां समान जैसा पूर्ण और अमर हैं, क्योंकि पाप नहीं है और मनुष्य अपने स्वयं की धार्मिकता नहीं पा सकता बल्कि प्रभु के मन से पा सकता है, जैसा कि शास्त्र ही ये कहते हैं। कामुक युगों के दौरान पूर्ण क्रिश्चियन साइंस को मृत्यु नामिक परिवर्तन से पहले प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति नहीं है जो हम नहीं समझते हैं, लेकिन मानव संज्ञान को प्रचारित करना चाहिए। ये कार्य ईश्वर हमें आज प्रेम पूर्वक स्वीकार करने के लिए और इतनी तेजी से व्यावहारिक सामग्री को छोड़ने के लिए और आध्यात्मिक कार्य करने के लिए कहता है जो बाहरी और वास्तविक को निर्धारित करता है। जीवन वास्तविक है और मृत्यु भ्रम है। यीशु की मार्ग में आत्मा के तत्वों का प्रदर्शन भावतिक अर्थों के सबसे गहरे दर्शन को समान जैसा पूर्ण और अमृता में बदल देता है। इस सर्वेक्षण में मनुष्य का विशेष अधिकार हमारे मालिक के शब्दों को साबित करना है कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। झूठे न्यासों और भावतिक साक्ष्यों के बारे में विचार करने के लिए ताकि आध्यात्मिक तथ्य सामने आ सकें, ये महान प्राप्ति है जिसके माध्यम से हम असत्य को मिटा देंगे और सत्य को स्थान देंगे। इस प्रकार हम मंदिर या ध्याय को सच में स्थापित कर सकते हैं जिसका निर्माता और बनाने वाला परमेश्वर है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।